भगवान महावीर के धर्म पताका को देश के कोने कोने में पहुंचाने वाले महान मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज साहब के चरण कमलों में शश्वत वंदन और आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दुनिया के लोग ये कहते हैं कि यदि आप जैन कुल में जन्मे हैं, यदि आप जैन कुल में जन्मे हैं तो यह आपके लिए भाग्य की बात है। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि यहां उपस्थित सैकड़ों जैन प्रतिभाशाली छात्र इससे भी आगे इसलिए सौभाग्यशाली हैं और ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें महान मुनि क्षमा सागर जी महाराज साहब का सानिध्य वंदना का अनुमोदन प्राप्त हो रहा है। आप देखें पूरी दुनिया में यह बात मानी जा रही है कि यदि आप नई पीढ़ी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, यदि आप परिवार को खुशहाल बनाना चाहते हैं, यदि आप समाज को खुशहाल बनाना चाहते हैं, यदि आप देश को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपके एक हाथ में कैरेक्टर चाहिए और आपके दूसरे हाथ में करियर चाहिए। आपके दो हाथों में दो बातें चाहिए, एक हाथ में करियर चाहिए, अच्छा करियर जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता, और दूसरी जो बात दूसरे हाथ में चाहिए वो चाहिए कैरेक्टर। हमारे देश में इस समय का जो माहौल है, इस समय का जो वातावरण है, वो वातावरण केवल ये है कि आप बच्चों को, आप नई पीढ़ी को केवल करियर की तरफ दौड़ा दीजिए। देश के करोड़ों माता पिता, देश का पूरा समाज केवल इस बात के लिए चिंतित है कि उनके बच्चे, उनकी नई पीढ़ी केवल करियर के रास्ते पर आगे बढ़े और दुनिया के उजले अवसरों को अपने हाथों में कैद कर ले। लेकिन वास्तव में जिंदगी का सच्चा करियर यदि बनाना चाहते हैं तो हमें करियर की दौड़ नहीं चाहिए, हमें करियर की दौड़ के साथ साथ कैरेक्टर भी चाहिए, हमें संस्कार भी चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर के माध्यम से हम अच्छे करियर के साथ में पूरा न्याय कर सकते हैं। और मैं वास्तव में आप सबको सौभाग्यशाली इसलिए भी कहता हूं कि आप जैन भी हैं, जैन प्रतिभा भी हैं, और आपके साथ में कैरेक्टर बनाने के लिए, करियर के साथ कैरेक्टर बनाने के लिए ऐसा एक वातावरण है। पूरा देश हर बार देखता है जैना अवार्ड को, यंग जैना अवार्ड को। गए बार मैं रामगंज मंडी में था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश से विद्यार्थियों के मेरे को फोन आए कि आपने यंग जैना अवार्ड में इतनी अच्छी बात बताई और क्षमा सागर जी महाराज साहब ने बच्चों को संस्कार की बातें बताई। मैं यदि ये कहूं और आप सभी यदि कहें कि इस देश की, हमारे पूरे समाज की, हमारे पूरे धर्म की जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है करियर के साथ कैरेक्टर, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आप सचमुच सारी प्रतिभाएं, सारे अभिभावक जो उपस्थित हैं वे सौभाग्यशाली हैं कि इस अनिवार्य आवश्यकता के लिए आप यहां हैं। और आज सुबह से मैं देख रहा हूं, सुबह में प्रवचन में भी शामिल हुआ, महाराज श्री का एक एक वाक्य, महाराज श्री का एक एक शब्द इस तरह का था कि वह नई पीढ़ी को आगे बढ़ा रहा है। और आप सच माने हमारी नई पीढ़ी आगे बढ़ेगी, अच्छे करियर की तरफ जाएगी, अच्छे संस्कार की तरफ जाएगी, हमारे पूरे परिवार की खुशहाली होगी, पूरे जैन धर्म की खुशहाली होगी, पूरे समाज की और पूरे देश की खुशहाली होगी। मेरे को बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे करना है और वो ये कि हम नई पीढ़ी का करियर कैसे बनाएं। और मैं बड़े आग्रह के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि मैं अपनी बात को दो भागों में आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात ये कि देश की नई पीढ़ी के सामने करियर के कौन से रास्ते हैं, करियर की कौन सी चुनौती है, और क्या इस परिवेश में जहां नई पीढ़ी के सामने केवल निराशा की बातें होती हैं, नई पीढ़ी के सामने केवल बेरोजगारी की बातें होती हैं, नई पीढ़ी के सामने करियर की चिंताओं की बातें होती हैं, क्या ऐसे परिवेश में भी हमारी नई पीढ़ी आगे बढ़ सकती है? यह हम सबसे पहले विचार करें, इस बात पे सबसे पहले चिंतन करें। मैं आपको बड़ी ईमानदारी पूर्वक बताना चाहूंगा कि इस समय देश के करियर का बाजार, देश के रोजगार का बाजार एक ऐसे दौर में है जहां एक तरफ निराशाएं भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ इतनी उजली संभावनाएं हैं कि जिंदगी में देश की आजादी के बाद से अब तक कभी भी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आपका करियर कौन सा हो, आप करियर के रास्ते पर कैसे आगे बढ़ें, किन बातों को ध्यान में रखें, यह समझने के पहले, यह जानने के पहले, इस पर विचार करने के पहले ये बात जरूरी है कि हम ये देखें कि हम जिस करियर के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं उसकी स्थिति क्या है, दुनिया के बाजार में हम कहां खड़े हैं और दुनिया में हमारी संभावनाएं क्या हैं। कल तक ये माना जाता था कि नई पीढ़ी का जो भविष्य है वह देश में है, आज ये माना जाता है कि नई पीढ़ी का जो करियर है, नई पीढ़ी का जो भविष्य है वो देश में और दुनिया के कोने कोने के अंदर है। आप इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से समझें, पिछले 10 साल से सरकारी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियां घटती गई हैं, यह सच्चाई है, देश की सरकार भी मानती है और हम सब इस बात को अनुभव करते हैं कि सरकारी क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियों की संख्या तेजी से घटी है और इनमें बढ़ने की संभावनाएं बहुत कम है। एक कटु सत्य है, सरकार बार बार राज्यसभा में वक्तव्य देती है, बार बार लोकसभा में वक्तव्य देती है और बेरोजगारी के आंकड़े भी बढ़ते हुए हैं, लेकिन ये वे आंकड़े हैं जो केवल सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं। बहुत सच्चाई के साथ में हमको इस बात को मानना है कि सरकारी क्षेत्र के अंदर, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नौकरियां घट रही हैं, इनमें बढ़ने की संभावनाएं कम है। लेकिन दूसरा जो पक्ष है, निजी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का जो पक्ष है, देश के आगे दुनिया में जो रोजगार का पक्ष है वो इतना उजला पक्ष है कि हमें सरकारी नौकरियां बड़ी फीकी लगने लगती है। हम भूल जाते हैं कि सरकारी नौकरियों के बारे में भी हमको ज्यादा सोचना चाहिए और मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि आप इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि आप लिबरलाइजेशन के दौर में हैं, आप प्राइवेटाइजेशन के दौर में हैं, आप ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं। ये उदारीकरण का दौर, ये निजीकरण का दौर, ये भूमंडलीकरण का दौर एक ऐसा दौर है जिसमें हर प्रतिभा के लिए दुनिया के कोने कोने के अंदर और देश के कोने कोने के अंदर रोजगार के अवसर हैं। हम देखें पिछले एक महीने के अंदर दुनिया के 4 देशों ने, बड़ी महत्वपूर्ण बात, बड़े गौर से सुनना है, पिछले एक महीने में दुनिया के 4 देशों ने, इनमें ब्रिटेन भी है, इनमें इटली भी है, इसमें नीदरलैंड भी है, इसमें जर्मनी भी है, इन 4 देशों ने भारतीय प्रतिभाओं के लिए खुले द्वार की नीति अपना ली। कल तक भारतीय प्रतिभाओं पर रोक थी, वे विदेशों में जाने के लिए कठिनाइयों का सामना करते थे, लेकिन इन 4 देशों ने, ऐसे अनेक देश और हैं, लेकिन 4 देशों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत की कोई भी प्रतिभा उनके देश में आकर रिसर्च कर सकती है। 5 साल के लिए वीजा उन्होंने बिल्कुल सरल बना दिया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। जब भारतीय प्रतिभाओं के लिए दुनिया के द्वार बंद हो रहे हैं, 4 देशों ने एक साथ इस बात को कही और एक सप्ताह पहले जब जर्मनी के चांसलर भारत में आए तो उन्होंने कहा जर्मनी भारतीय प्रतिभाओं का स्वागत करने के लिए तैयार है। दुनिया के कोने कोने के अंदर भारतीय प्रतिभाओं के लिए द्वार खुल रहे हैं और आप ये मत माने कि ये द्वार केवल भारतीय डॉक्टरों के लिए है, आप ये मत माने ये द्वार केवल भारतीय इंजीनियरों के लिए है, भारतीय आईटी विशेषज्ञों के लिए है, ये द्वार उन सभी भारतीय प्रतिभाओं के लिए है जो विशेषज्ञता प्राप्त कर लेती है। विशेषज्ञता किसी ऊंची डिग्री की हो या किसी छोटे से प्रशिक्षण की भी हो, यदि ऐसी विशेषज्ञता है तो दुनिया के कोने कोने के अंदर भारतीय प्रतिभाओं के लिए द्वार खोले जा रहे हैं। ये एक करियर का ऐसा पक्ष है जो हमारे मस्तिष्क से इस बात को निकाल देगा कि दुनिया में हमारी प्रतिभाओं के लिए अवसर नहीं है। और दूसरा एक बड़ा जो मोड़, आपको आश्चर्य होगा, कल तक हम प्रतिभा पलायन की बात करते थे, ब्रेन ड्रेन की बात करते थे कि भारतीय प्रतिभाएं दुनिया में जा रही है, अभी जो स्थिति बदली है, पूरी दुनिया में स्थिति बदली है, वो ये कि प्रतिभा पलायन की परिभाषा बदल गई है। हमारे देश की प्रतिभाएं दुनिया में जा रही हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि ये प्रतिभाएं भारत में अच्छे रोजगार की संभावनाओं में देश में आने लगी है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि पिछले 3 साल में 25,000 भारतीय प्रतिभाएं भारत लौटी हैं, क्योंकि उनको भारत में अच्छे रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है नेस्काम। नेस्काम का काम होता है कि कौन से देश के कितनी प्रतिभाएं दुनिया में गई और दुनिया से लौटी। ऐसे नेस्काम ने 15 दिन पहले एक सर्वे दिया है कि भारत की प्रतिभाएं भारत में तेजी से लौट रही है। कितना बड़ा आश्चर्य! कल तक हमारी प्रतिभाएं विदेशों में जाती थी और वहीं रह जाती थी। उन्हें डर होता था कि देश में उनके अच्छा रोजगार नहीं मिलेगा, उनको डर होता था कि देश में अच्छा करियर नहीं मिलेगा, उनको डर होता था कि देश में अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। लेकिन नेस्काम का कहना है कि 3 साल में 25,000 भारतीय प्रतिभाएं, वे डॉक्टर भी हैं, वे इंजीनियर भी हैं, वे आईटी विशेषज्ञ भी हैं और वे तरह तरह की विशेषज्ञता रखते हैं, ऐसे 25,000 लोग भारत में लौटे हैं। आपका प्रश्न होगा, आपके मन में ये बात आएगी और आनी चाहिए कि ऐसा इस देश में क्या हो रहा है, इस देश में करियर के बारे में, इस देश में, हमारे देश में रोजगार के बारे में ऐसा क्या हो रहा है कि देश की प्रतिभाएं देश में आने लगी है। और इसका जो जवाब है, इसका जो समाधान है, वो है आउटसोर्सिंग होने लगा है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या कि एक देश का काम दूसरे देश में जाना, क्योंकि वहां काम सरल हो जाता है, क्योंकि वहां काम कम कीमत पे हो जाता है, क्योंकि वहां काम गुणवत्तापूर्ण हो जाता है। इन 3 कारणों से आउटसोर्सिंग होने लगी है। मतलब एक देश की नौकरियां दूसरे देश में जा सकती है, एक देश का रोजगार दूसरे देश में जा सकता है। और हमारा देश, ये गर्व की बात है, ये प्रतिष्ठा की बात है और आप सबको ध्यान रखने की बात है कि हमारा देश पूरी दुनिया में आउटसोर्सिंग के लिए पहले क्रम पे है। आप आश्चर्य करेंगे, करियर के कितने रास्ते हमारे देश में खुले हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि देश में आउटसोर्सिंग होने लगा है और देश पूरे दुनिया में पहले क्रम पे है। दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के लोग कल तक नोएडा का नाम नहीं जानते थे, पूरी दुनिया के लोग कल तक बेंगलोर का नाम नहीं जानते थे, पूरी दुनिया के लोग कल तक हैदराबाद का नाम नहीं जानते थे, पूरी दुनिया के लोग कल तक चेन्नई का नाम नहीं जानते थे। ऐसे देश के कई नगर हैं। आज पूरी दुनिया के कोने कोने के अंदर नोएडा को जाना जाता है, चेन्नई को जाना जाता है, बेंगलोर को जाना जाता है। और उसका कारण यह है कि यहाँ आउटसोर्सिंग हो रहा है। हर चौराहे पर एक कॉल सेंटर है। ये कॉल सेंटर भारत में भी रोजगार दे रहा है और अमरीका की नौकरियां, जर्मनी की नौकरियां, ब्रिटेन की नौकरियां, इन सारे देशों की नौकरियां बड़ी संख्या में भारत में आने लगी है। यह है करियर का परिदृश्य। मेरा यहां बैठे सैकड़ों विद्यार्थियों से और हजारों अभिभावकों से निवेदन है कि वे अपने मस्तिष्क में इस बात को अच्छी तरह से रखें कि उनकी नई पीढ़ी का, उनके बच्चों का बहुत अच्छा करियर होगा, क्योंकि उनके लिए देश में भी संभावनाएं हैं और उनके लिए दुनिया के कोने कोने के अंदर संभावनाएं हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारा देश WTO का सदस्य है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन में इस समय 148 देश सदस्य हैं। ये सारे देश अपने व्यापार के नियम, अपनी आयात नीति, अपनी निर्यात नीति, अपने आर्थिक क्रियाकलापों को एक जैसी नीतियों के अंतर्गत कार्यान्वित करते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि देश में भी आपके लिए व्यापार, आगे बढ़ने के लिए कैरियर की वो संभावनाएं हैं जो दुनिया के कोने कोने के अंदर हैं, क्योंकि हम WTO के सदस्य हैं। ये सारा कैरियर का ऐसा परिदृश्य है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है कि हम जितनी मेहनत करेंगे, हम जितना परिश्रम करेंगे, हम करियर के रास्ते पर उतना आगे बढ़ जाएंगे। हम सरकारी नौकरियों के बारे में सोचना कम करें और हम निजी क्षेत्र के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर सोचना शुरू करें। मैंने सुबह देखा यहां उपस्थित कई विद्यार्थियों से मैं मिला। ये विद्यार्थी वे हैं जो 10वीं कक्षा भी पास कर चुके हैं और ये विद्यार्थी वे भी हैं जो 12वीं कक्षा और उसके आगे भी अपनी डिग्रियां लेने के लिए तत्पर हैं। मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि करियर की उजली संभावनाओं के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण दौर है, जो सबसे महत्वपूर्ण समय है, वो है जैसे ही हम दसवीं पास करते हैं, हम इलेवेंथ में हैं, हम ट्वेल्थ में हैं, ये करियर की बुनियाद का समय है। कोई 10 साल पहले मेरे पास लोग करियर के बारे में जब सलाह लेने आते थे तो वे आते थे एम कॉम करने के बाद में, वे आते थे एमए करने के बाद में, वे आते थे एमएससी करने के बाद में, थोड़े समय बाद बीए करने के बाद आने लगे, बीकॉम करने के बाद आने लगे, बीएससी करने के बाद आने लगे। लेकिन इस समय जब हम ये बात कर रहे हैं, जब हम 2004 में बात कर रहे हैं, ये समय करियर के बारे में सोचने का, करियर के बारे में चिंतन करने का वो समय है जब आप 10वीं कक्षा पास कर चुके हैं, जब आप 11th में हैं, जब आप 12th में हैं, ये आपका टर्निंग पॉइंट है। यदि आप साइंस मैथ्स ले रहे हैं, यदि आप साइंस मैथ्स ले चुके हैं, आप सच माने हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि हमारा जो मेन टारगेट है वो कौन सा है। मैं सारी विधाओं की बात करूंगा, कई घंटों तक अपनी ये बातचीत हो सकती है, लेकिन ब्रीफ में पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हम 11 12th में हैं, आप में से कई विद्यार्थी साइंस मैथ्स के हैं, हम पहले उनकी बात करें। यदि साइंस मैथ्स के विद्यार्थी हैं तो आप इस बात को बड़े गौर से सुने कि केवल एकमात्र हमारा जो टारगेट आईआईटी के माध्यम से करियर बनाना नहीं होना चाहिए। आप सच माने आईआईटी हमारे देश की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है, पूरी दुनिया के लोग भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ देखते हैं कि यहां से जो वैज्ञानिक प्रतिभाएं निकलेंगी वे दुनिया के अंदर अपनी सेवाएं देंगी, देश और दुनिया को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन स्थिति क्या है, यदि हम 100 विद्यार्थियों से बात करें, एक सर्वे में बता रहा हूं, यदि हम 100 विद्यार्थियों से बात करें जो सर्वे में आया है, 100 में से 90 विद्यार्थी जिनने साइंस मैथ्स लिया है, जिनने गणित विषय लिया है 11th में, 100 में से 90 विद्यार्थियों का कहना यह है कि वे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए 100 में से 90 विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि वे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। ये 90 विद्यार्थी कौन है? ये 90 विद्यार्थी वे हैं जिनके 10th में कोई 50% भी अंक आए हैं। ये 90 विद्यार्थी वे भी हैं जो 60-70% के आसपास चल रहे हैं। ये विद्यार्थी वे भी हैं जिनमें से कुछ के 50 से भी कम प्रतिशत आए हैं। सबसे ऊंचा सपना देखना तो सबसे सरल है, सपने देखने के लिए हम सब स्वतंत्र हैं। मेरा आग्रह यह है कि यदि हम बिल्कुल एवरेज विद्यार्थी हैं फिर भी गणित ले चुके हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गणित का सब दुर्महत्व है। लेकिन केवल आईआईटी का सपना नहीं देखें। मेरे पास कई विद्यार्थी आते हैं जो आईआईटी की बहुत मेहनत करते हैं, देश में आईआईटी के प्रशिक्षण का, कोचिंग का जो गढ़ है, कोटा में रहते हैं, 3-3 साल रहते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि खूब मेहनत हो गई, खुद समय गया, अब हम क्या करें। मेरा आप सबसे, यहां बैठे हुए हजारों लोगों से, जो विद्यार्थी भी हैं, जो उनके पेरेंट्स भी हैं, एक बड़ा विनम्र निवेदन है कि यदि साइंस मैथ्स लिया गया है तो वे केवल आईआईटी का सपना नहीं देखें। यदि विद्यार्थी बिल्कुल अति विशिष्ट प्रतिभा का है, मैं बड़ा विशेष शब्द दे रहा हूं, अति विशिष्ट प्रतिभा का है, तो आईआईटी के बारे में सोचा जाना चाहिए। क्योंकि आईआईटी के अंतर्गत भी यदि 2000 के बाद की रैंकिंग है, एक सत्य मैं आपको और बता रहा हूं, 2000 के बाद की रैंकिंग है तो हमें बहुत अच्छा आईआईटी भी नहीं मिलेगा और बहुत अच्छी ब्रांच भी नहीं मिलेगी। इसकी तुलना में यदि हम एवरेज से हैं, एवरेज से कुछ अच्छी स्थिति में भी हैं, तो भी कुछ अच्छे सपने देखें जिसकी पूर्ति कर सकते हैं। आप AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से देश के जो 32 इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां बहुत अच्छी ब्रांच है, जो अच्छे अध्यापन के लिए प्रसिद्ध है, आप वहां के बारे में सोच सकते हैं। और उससे भी पीछे हटे, यदि हम एमपी के हैं तो एमपी पीईटी के सोचें। देश के हर एक स्टेट में राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग परीक्षा होती है। मेरा आप सबसे आग्रह है, वे विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, वे अपनी योग्यता क्षमता के अनुरूप ऐसा सपना देखें जो केवल आईआईटी का नहीं हो। क्योंकि एमपी पीईटी से भी, एक उदाहरण ले हम, एमपी पीईटी से भी यदि आप पहले 500 विद्यार्थियों में आ जाते हैं, पहले 500 में रैंकिंग होती है, आपको इंदौर का जीएसआईटीएस मिलेगा, पूरे देश में और दुनिया में नाम है। आप इंदौर के डीएवीवी का आईटीई कॉलेज मिलेगा। यदि यहाँ के विद्यार्थी भी हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा उदाहरण के साथ में कि गए साल देश की और दुनिया की 34 कंपनियां इंदौर में कैंपस के लिए आई है। 34 कंपनियां, हम केवल आईआईटी के बारे में इसलिए ना सोचें कि दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजों में अच्छी ब्रांच है, वहां भी अच्छा कैंपस है, अच्छा रोजगार। तो आप बड़े आग्रह के साथ इस बात को सुने कि इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो केवल आईआईटी का सपना मत रखिए, आप स्टेट लेवल की परीक्षा की भी तैयारी करें और आप AIEEE की भी तैयारी करें, क्योंकि इन दोनों के पैटर्न न लगे। यदि आईआईटी का सपना बना लिया है तो फिर भी आपको इस वक्तव्य के बाद में लगे कि नहीं हम वह नहीं कर सकते हैं, तो आप थोड़ा पीछे हटें, AIEEE, MPPET और स्टेट एग्जामिनेशन की तैयारी करें। यदि आप यहां सबसे उजली ब्रांच कौन सी इस समय दुनिया में और देश में पहले क्रम पे आती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया में स्वागत किया जा रहा है भारत के इंजीनियरिंग विद्यार्थियों का। दूसरे क्रम पे आप कंप्यूटर को रख सकते हैं, तीसरे क्रम पे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रख सकते हैं। ऐसी जो ब्रांच है वे सबसे अच्छी ब्रांच है। यदि आप बहुत ईमानदारी से मेहनत करते हैं, इतनी अच्छी ब्रांच मिल जाती है, तो केवल आईआईटी की तुलना में आप दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजों के बारे में भी जरूर सोचें और सोचा जाना चाहिए। हम दूसरे फील्ड पे आते हैं। सुबह मैंने कई विद्यार्थियों से बात करी, वे साइंस बायोलॉजी लिए हुए हैं। डॉक्टर बनना एक समय में सबसे पहला सपना हुआ करता था, आज भी है, लेकिन यदि आप पीएमटी के लिए परीक्षा में जाते हैं उस बात को भी देखें, आप सीपीएमटी परीक्षा में जाते हैं उस बात को भी देखें। इसलिए वे विद्यार्थी जो साइंस बायोलॉजी ले चुके हैं दसवीं के बाद में, उन सब से और उनके पेरेंट्स से मेरा आग्रह ये है कि डॉक्टर बनाना आपको बहुत सरल बात नहीं है। कितनी सरल बात नहीं है, आप इसकी कल्पना करें कि हमारे मध्य प्रदेश में, हम मध्य प्रदेश का उदाहरण लें, मध्य प्रदेश में जनरल कैटेगरी की केवल 200 सीट हैं, पीएमटी के बाद में जनरल कैटेगरी की केवल 200 सीट हैं। आप देखें 1.5 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा के अंदर बैठते हैं और 1.5 लाख में से हमारे सामने केवल 200 सीट होती हैं जनरल कैटेगरी की। कितना कठिन काम है। तो ऐसे विद्यार्थी केवल पीएमटी और सीपीएमटी की नहीं सोचे, वे पैरामेडिकल कोर्स की सोचे। पैरामेडिकल कौन से? वे सारे कोर्स जो डॉक्टर न बना सके लेकिन डॉक्टर जैसा बना सके, उन्हें हम कहेंगे पैरामेडिकल कोर्स। वे सारे कोर्स जो डॉक्टर जैसी सेवा करने के लिए हमारी स्थितियां उत्पन्न कर दें, हमें मौका दे दें। फिजियोथेरेपी का कोर्स बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश के कई कॉलेजों के अंदर, सारे बड़े शहरों के अंदर उपलब्ध है। आप फार्मेसी के लिए जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फार्मेसी की मांग बहुत तेजी से पूरे देश में बढ़ रही है और पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है। आप रेडियोग्राफी की तरफ जा सकते हैं। ऐसे 15 से लगा के 20 तक के कोर्स हैं जिन्हें हम पैरामेडिकल के कोर्स जा सकते हैं। वे सारे विद्यार्थी जो डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं, मेरा उन सबसे आग्रह है कि डॉक्टर बनने के लिए तैयारी तो जरूर करें, लेकिन वहां संभावनाएं हमारी बहुत कम है। खासतौर से जो हमारे छात्राएं होती हैं, उनको ये ध्यान में रखना है कि बहुत कम रास्ते बचेंगे। और फिर केवल MBBS बनने से काम नहीं होगा, हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में सुपर स्पेशलाइजेशन। जिस तरह से मेडिकल साइंस आगे बढ़ा है, वहां सबसे ज्यादा जो उजली संभावनाएं हैं वो सुपर स्पेशलाइजेशन की है। तो वे विद्यार्थी जो 10th के बाद में मेडिकल साइड के लिए जाना चाहते हैं, वे मेडिकल पीएमटी के साथ साथ अपने पैरामेडिकल कोर्स की तरफ भी ध्यान दें, ये उनके लिए जरूरी होगा। इन दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए, जो साइंस मैथ ले रहे हैं और जो साइंस बायोलॉजी ले रहे हैं, कुछ ऐसी पत्रिकाएं मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि हम ट्यूशन पे नहीं गए, यदि हम कोचिंग पे नहीं गए, तो घर बैठे भी यदि रात दिन हमने तैयारी करी, तो कुछ ऐसी पत्रिकाएं हैं, कुछ ऐसी मैगजीन से जिन्हें हम पढ़कर भी आगे बढ़ सकते हैं। ये विद्यार्थी जो साइंस मेंस लेते हैं, उनके लिए 3 पत्रिकाएं बड़ी उपयोगी हैं। वे आपको स्टेट लेवल पे आगे बढ़ा सकती हैं, वे आपको AIEEE की तरफ आगे बढ़ा सकती हैं और वे IIT में भी आपको सफलता दे सकती हैं। 3 पत्रिकाएं साइंस मेंस के विद्यार्थी के लिए जो 11th और 12th में हैं। पहली पत्रिका है मेंस टुडे, पत्रिका का नाम है मेंस टुडे। दूसरी पत्रिका है फिजिक्स टुडे। तीसरी पत्रिका है केमिस्ट्री टुडे। ये 3 पत्रिकाएं आप अच्छी तरह से नोट करें साइंस मैथ्स के विद्यार्थी। साइंस बायोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए फिर 3 पत्रिकाएं हैं। नंबर 1 बायोलॉजी टुडे, नंबर 2 फिजिक्स टुडे, नंबर 3
केमिस्ट्री टुडे, इन पत्रिकाओं के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें टिप्स होती है हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, इसमें शॉर्टकट होते हैं और इसमें देश के सारे जो विशेषज्ञ होते हैं अपनी अपनी विधाओं के, उनके लेख और उनके क्वेश्चंस भी होते हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि यदि मान लीजिए हमारे विद्यार्थियों ने, हमारे बच्चों ने साइंस मैथ्स नहीं लिया, साइंस बायोलॉजी नहीं ली, तो ऐसा लगेगा कि ये विद्यार्थी कहीं दोयम दर्जे के हैं। वे कॉमर्स को भी तीसरे नंबर पे रखते हैं और आर्ट्स को तो चौथे नंबर पे रखते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि यदि आप अपने परिवार के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट साइंस मैथ्स में कम है, उनका इंटरेस्ट साइंस बायोलॉजी में कम है, तो कॉमर्स में भी इतने अवसर हैं कि आपको करियर के उजले रास्तों पर आगे बढ़ा सकते हैं। और इनके जो कैंपस होते हैं, इनकी जो सैलरी होती है, इनके जो पैकेज होते हैं, वे किसी भी तुलना के अंदर साइंस मैथ्स और साइंस बायोलॉजी के विद्यार्थियों से कम नहीं हो सकते हैं। यदि मान लीजिए हम 11th 12th के अंदर कॉमर्स की तैयारी करते हैं और कॉमर्स में 12th के बाद में एक टारगेट रखते हैं कि हमें डिग्री के साथ साथ कोई अच्छा पाठ्यक्रम करना है, आपके पास में चार्टेड अकाउंटेंसी का पाठ्यक्रम है, आपके साथ में कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है, आपके साथ में कॉस्ट अकाउंटेंसी का, ICWA का कोर्स है, तो यदि हम वास्तव में बच्चों को कॉमर्स की तरफ ले जा रहे हैं जिसमें उनका रुझान है, तो ऐसा करियर ऑप्शन भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मेरे पास में, मेरे जो कॉलम आते हैं अखबारों के अंदर, उसमें सैकड़ों की संख्या में प्रश्न पूछते हैं कि हमारे विद्यार्थी 11th और 12th में, ये प्रश्न हर सप्ताह पूछा जाता है और हर सप्ताह मेरे पास में 50 पत्र केवल इसलिए आते हैं कि 11th 12th की तैयारी जब कर रहे हैं तो हम 12th के बोर्ड की परीक्षा होती है, हम उसमें 90% का टारगेट रख रहे हैं, हम उसमें 95% का टारगेट रख रहे हैं, बताइए हमारा टारगेट कितना होना चाहिए। आप में से हर विद्यार्थी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जितने पेरेंट्स हैं, सैकड़ों की संख्या में हम यहाँ बैठे हैं, आपको भी ये ध्यान रखना है और आपके जो परिचित हों आपको उनको भी बताना है कि कैरियर का जो पैटर्न बदला है, कैरियर का जो सोचने का, करियर के रास्ते में आगे बढ़ने की जो स्थिति बदली है, उसके हिसाब से यदि आपके 11th में मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं आते, आपको आश्चर्य होगा मेरे जब इन शब्दों को आप सुन रहे हैं कि 11th में किसी विद्यार्थी को स्कूल के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते, वो मेरिट लिस्ट में नहीं आता स्कूल की मेरिट लिस्ट में, 12th के अंदर वो स्टेट की या सेंट्रल बोर्ड की मेरिट लिस्ट में नहीं आता, तो आप मत आने दीजिए। वो जमाना बीत गया जब हम मेरिट लिस्ट की बात किया करते थे, वो जमाना भी बीत गया जब 12th की मार्कशीट के आधार पे, 12th के परसेंट के आधार पे आपको कहीं भी अच्छे कोर्स के लिए, चाहे वो MBBS होता था, चाहे वो BE होता था, हमें सीधा प्रवेश मिल जाता था। इस बात को बहुत गौर से सुनना है और समझना है। आप कोशिश करें कि 75% के ऊपर लाए, एक टारगेट बना ले आप, लेकिन केवल 12th की परीक्षा में हम 90% लाए, हम 95% लाए, आप ऐसा टारगेट कम से कम बनाइए। हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो हम 11th 12th में 50% प्रिपरेशन करेंगे हमारे स्कूल के लिए और 50% हम प्रिपरेशन करेंगे हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। एक ऐसा करियर का मंत्र मैं आपको बता रहा हूं जहां से सारी ऊंचाइयां आगे बढ़ती हैं। पिछले बार मेरे पास ऐसे कई विद्यार्थी आए, कई पेरेंट्स आए जिनके बच्चों के नंबर 12th के अंदर 95% थे, 97% थे। वो साइंस मैथ्स के विद्यार्थी भी थे, वो साइंस बायोलॉजी के भी विद्यार्थी थे। वे सारे पेरेंट्स मेरे पास आने के बाद में आंखों में आंसू लेकर आए थे। आप आश्चर्य करेंगे जब वे बता रहे हैं कि 95% है 12th में, वे बता रहे हैं 97% है 12th में, और माता पिता दोनों के आंखों में आंसू है और बच्चा एकदम निराश स्थिति के अंदर बैठा हुआ है और वे बताते हैं कि 12th में 95% है, 97% है, लेकिन जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें 45% है, 47% है। सारी मेहनत बेकार हो गई, सारे सपने बेकार हो गए, सारी मेहनत जो डिग्री की थी, ट्वेल्थ की थी, सारी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि करियर का जो बदला हुआ दौर है वो दौर ये कहता है कि आप स्कूल की प्रिपरेशन भी बराबरी से करें और आप इंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बराबरी से करें। मैं नहीं चाहता हूं कि यहां सैकड़ों की संख्या में जो विद्यार्थी बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, जिनका संबंध 11, 12 की कक्षाओं के बच्चों से हैं, वे इस मंत्र को समझें कि हमें स्कूल की तैयारी भी करना है, 11th में भी अच्छे मार्क्स लाना है और इंट्रेंस एग्जामिनेशन के रोज तैयारी का समय देना है। आप कोचिंग क्लास में न जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने घर पर आप उन नोट्स को मंगाइए, आप उन किताबों को मंगाइए जिनका संबंध सीधे सीधे इंट्रेंस एग्जामिनेशन से है। आप सच माने हमें स्कूल में भी आगे बढ़ना है और स्कूल के साथ साथ इंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आगे बढ़ना है। जैसे ही हम कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स के विद्यार्थियों का एक सपना होना चाहिए कि केवल बीकॉम की डिग्री का कोई महत्व नहीं है, केवल एमकॉम की डिग्री का कोई महत्व नहीं है। वे 11, 12 में जैसे ही आए हैं उन्हें एक सपना देखना चाहिए कि मैं डिग्री के साथ, कॉमर्स की डिग्री के साथ में सीए करूंगा, सीएस करूंगा, आईसीडब्ल्यू करूंगा और ऐसे 50 तरह के कोर्स हैं जिन्हें हम प्रोफेशनल कोर्स कह सकते हैं। या जो पेरेंट्स बैठे हैं, यदि उनके मन में ये बात आती हो कि कॉमर्स करने के बाद में अच्छा करियर नहीं बनेगा, अच्छे पैकेज नहीं मिलेंगे, मैं उनको उदाहरण देना चाहूंगा और बहुत अच्छा उदाहरण, बहुत जीवित उदाहरण। 5 पहले मेरे पास उज्जैन का एक विद्यार्थी, पूरे देश में सबसे ज्यादा मार्क्स उसको मिले, पूरे देश में उसको 3 गोल्ड मेडल मिले, हमारे जैन समाज का विद्यार्थी मौसम सीए फाउंडेशन की इस तरह तैयारी करता है कि सीए के बाद में, बीकॉम के बाद में उसे बहुत अच्छा करियर मिलेगा। इतनी मेहनत करी कि वो परिश्रम का विकल्प बन गया, रात दिन एक टारगेट कि केवल डिग्री से कुछ नहीं होता है। जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि केवल बीकॉम, बीएससी, बीए, एमकॉम, एमएससी इनकी डिग्री से आपका कुछ भी हल नहीं होगा। इनमें आप गोल्ड मेडल लाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई रोजगार, बहुत अच्छा रोजगार नहीं मिलेगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगी। उस मौसम ने इस बात को बहुत अच्छा समझा। आप सच माने पूरे देश के 3 गोल्ड मेडल सीए फाउंडेशन को उसको मिले और देखें ये मेहनत कितनी आगे बढ़ी। उसको एक इंटरनेशनल फर्म ने मुंबई में आर्टिकलशिप दे दी। इंटरनेशनल फर्म ने इसलिए आर्टिकलशिप दी कि वो सीए का टॉपर है, फाउंडेशन का टॉपर है, उसके पास में 3 गोल्ड मेडल है, उसके पास में 5 विषय में देश के हाइएस्ट मार्क्स हैं। और अब जो स्थिति बनी सीए फाइनल होने के बाद में देश की और दुनिया के प्रसिद्ध हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी ने उसे शुरुआत का पैकेज दिया है 6 लाख रुपए वार्षिक। और एक बात और, हमारे जैन समाज का वो विद्यार्थी कितना धार्मिक कि उसको जब अपॉइंटमेंट लेटर मिला कि उसे 1 नवंबर से ज्वाइन करना है हिंदुस्तान लीवर, उसने सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छुए, उनसे एक आग्रह किया कि मुझे तीर्थ यात्रा पर ले चलो। आप देखिए संस्कार, एक संस्कार क्या था, जैन धर्म का होने के कारण, जैन धर्म में दीक्षित प्रशिक्षित होने के कारण, ईमानदारी का, मेहनत का, और वह संस्कार कैसे आगे बढ़ा कि 1 नवंबर को हिंदुस्तान लीवर ज्वाइन करने के पहले उसने कहा कि मेरे को तीर्थ यात्राओं पर ले चलो, और वो पालीताना और गुजरात और राजस्थान की तीर्थ यात्रा करके आया है, 1 नवंबर को कैरियर शुरू करेगा। ये इस बात का प्रमाण है कि हमें सभी दूर रोजगार के अवसर हैं। आप कला संकाय में जाते हैं तो वहां भी रोजगार के अवसरों का ढेर है। आप किसी भी फील्ड में बने, आप 3 बात को ध्यान में रखें, आपकी रुचि क्या है, आपकी योग्यता क्या है, आपकी क्षमता क्या है, एबिलिटी, कैपेसिटी एंड इंटरेस्ट। ये 3 बातें आप दिमाग में ध्यान में रखें, आप दुनिया में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि अब करियर की बातें केवल देश तक सीमित नहीं है, इसको बुरा भी नहीं माना जाता। किसी समय यह माना जाता था कि आप विदेश जा रहे हैं, देश को नुकसान हो रहा है, लेकिन अब दुनिया एक मुट्ठी में है। दुनिया के 148 देश WTO के सदस्य हैं और एक मुट्ठी में है, तो यदि वे देश में हैं तो भी देश की सेवा कर रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं तो डॉलर का ढेर लगा रहे हैं, कितने डॉलर आ रहे हैं देश में, कि इस समय हमारे देश का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है विदेशी मुद्रा कोष से वो 126 अरब डॉलर है। पूरे एशिया में दूसरे क्रम पे चाइना के बाद में कितने उफन रहे हैं देश के अंदर विदेशी मुद्राओं के ढेर, और इसका कारण हमारे देश की प्रतिभाएं हैं। पूरे देश में और दुनिया के अंदर हमारे देश की प्रतिभाएं आगे बढ़ रही है, और दुनिया के सबसे बड़ी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क। उसका कहना ये है कि आगे आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया में भारत की प्रतिभाएं पहले क्रम पे होगी। और इस रिसर्च में उन्होंने क्या बातें बताई, उन्होंने ये बताई कि भारत की जो नई पीढ़ी है, भारत की नई पीढ़ी इस समय कोई 15 करोड़ की संख्या में है। 15 करोड़ की संख्या में हमारे देश के विद्यार्थी विभिन्न अवस्थाओं में पढ़ाई कर रहे हैं। रिसर्च में कहा गया कि अगले वर्षों में, आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया में जनसंख्या में कमी, वर्किंग जो फोर्स होती है, वर्किंग पॉपुलेशन होती है जिसे हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, उसमें कमी आएगी। आप देखिए रिसर्च की एक एक बात, पूरी दुनिया में वर्किंग पॉपुलेशन में कमी आएगी, और इस कमी को पूरा करने में भारत की नई पीढ़ी सबसे आगे आएगी। क्यों आएगी? कि भारतीय मस्तिष्क को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क माना जाता है। पूरी दुनिया में भारतीय यश पताका फैला रहे हैं। हमें लगता है कि हम देश में अपनी प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। आप कोई भी रिसर्च उठा के देखें, पूरी दुनिया के कोने कोने के अंदर भारतीय प्रतिभा अपनी यश की पताका फैला रहे हैं। ये माना जाता है कि यदि भारतीय हैं तो ये सबसे बढ़िया काम करेंगे, और बड़ा सम्मान होता है। कितना सम्मान होता है, एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं। मेरा बेटा अमेरिका गया है एमएस करने के लिए, अगस्त में उसके जीआरई में और टोफेल में 95% और 97% मार्क्स थे। उसको पूरी स्कॉलरशिप दी कैंसास यूनिवर्सिटी ने। जाते बराबर 2 घंटे का उसको काम मिला। सारे हमारे विद्यार्थी काम करते हैं वहाँ पे, 2 घंटे के काम के लिए शुरुआत में उसको उसी की यूनिवर्सिटी में $700 दिए। लेकिन काम इतना, ईमानदारी इतनी, विनम्रता इतनी थी कि 1 अक्टूबर से उसके $1,300 कर दिए गए, क्योंकि भारतीय प्रतिभा की कीमत है। और ये एक हमारा उदाहरण है। और जो जैन प्रतिभाएं हैं, मैं आपको सच कहता हूं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम जैन कुल के अंदर जन्मे हैं। जैन प्रतिभाएं और तेजी से आगे हैं। ऐसे जो सर्वे हैं, जब वे कास्ट वाइज किए जाते हैं तो जैन प्रतिभाओं को उसमें ऊपर रेखांकित किया जाते हैं। मेरा आपसे आग्रह ये है कि आप कैरियर का कोई भी रास्ता चुने, चाहे आप बायोलॉजी के क्षेत्र में जाएं, चाहे आप मैथ्स के क्षेत्र में जाएं, कॉमर्स के क्षेत्र में जाएं, पूरी दुनिया में और पूरे देश में आपके लिए अवसर है। निराशा की बात को आप निकाल दीजिए, आप इस बात को निकाल दीजिए कि रोजगार के अवसर घट रहे हैं। मैंने शुरुआत में आपसे आग्रह किया कि निश्चित रूप से गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर रोजगार के अवसरों का तूफान मचा हुआ है, रोजगार के अवसरों का ढेर लगा हुआ है। और आने वाले कल में हमारे देश की नई पीढ़ी के लिए दुनिया के कोने कोने के अंदर रोजगार के अवसर होंगे। कितने अवसर होंगे? 2020 तक के जो आंकड़े हैं, अमेरिका में दुनिया का राजा, जहां से व्यापार की हवाएं चलती हैं, ऐसे अमेरिका के अंदर 2020 तक 1,70,00,000 वर्किंग फोर्स की, कार्यशील जनसंख्या की कमी पड़ेगी। ये रिसर्च जो आई है वो बता रहा हूं मैं आपको। अमेरिका में 2020 तक 1,70,00,000 कार्यशील लोगों की कमी पड़ेगी। जापान में 90,00,000 लोगों की कमी पड़ेगी जो कार्य कर सकते हैं वहां के अनुरूप। रूस में 60,00,000 लोगों की जरूरत पड़ेगी। ब्रिटेन में 30,00,000 लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये दुनिया के विकसित देश हैं, और दुनिया के अधिकांश देशों में भी वर्किंग पॉपुलेशन की कमी पड़ेगी। यदि हमारी नई पीढ़ी इस तरह से प्रोत्साहित हो, उन्हें जैसे जेना अवार्ड मिल रहे हैं, मैं आपसे आग्रह के साथ कहूंगा कि पूरा देश का, जैन समाज नहीं पूरा देश, हमारे महान मुनि क्षमा सागर जी महाराज के चरण कमलों में वंदना करता है कि जैन पीढ़ी को तैयार करें, इस देश की पीढ़ी को तैयार करें वो। क्यों? क्योंकि इनके पास में वो ताकत होगी जिससे वे देश में आगे बढ़ सकेंगे, जिससे वे दुनिया में आगे बढ़ सकेंगे, और दुनिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन की जरूरत होगी केवल वह तीर गिनने वाली नहीं होगी, केवल वो नाम गिनने वाली नहीं होगी, वो जो जनसंख्या की कमी होगी वो कमी इस बात के लिए होगी कि वे शिक्षित भी हों और प्रशिक्षित भी हों, वो कमी इस बात के लिए होगी कि हमारी जो नई पीढ़ी है उन्हें करियर की जरूरतों की जानकारी हो, उन्हें रोजगार बाजार की जरूरतों की जानकारी हो, और हम पाएंगे कि पूरी दुनिया के अंदर भारत की नई पीढ़ी आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी, अपनी यश पताका को लिए आगे बढ़ाई देगी। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, सचमुच बधाई देना चाहूंगा कि आपने 75% और 85% जैसे अंकों को प्राप्त किया है, प्राप्त करके आप जिना अवार्ड भी प्राप्त कर रहे हैं और हमारे महान मुनि क्षमा सागर जी महाराज साहब के आशीर्वाद को भी प्राप्त कर रहे हैं। आप देश और दुनिया में आगे बढ़ेंगे, आप परिवार को आगे बढ़ाएंगे, आप जैन समाज को आगे बढ़ाएंगे, आप देश को आगे बढ़ाएंगे, और दुनिया में जो जरूरतें होंगी वह कैरियर के साथ कैरेक्टर के रूप में आप पूरी करेंगे। जय जिनेंद्र। पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट, ये एक ऐसा कोर्स है जो ग्रेजुएशन के बाद में होगा, और इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट भी होगा, पब्लिक रिलेशन भी होगा, और इसमें आईटी भी होगी। तीनों लाइन आप एक साथ में अपनी आगे बढ़ा सकेंगी, और देश के अधिकांश यूनिवर्सिटी में आपको एमए पीआरएम जैसा कोर्स मिल जाएगा, आप इस लाइन से आगे बढ़े।
मैं तुषार जैन फ्रॉम महितपुर। सर, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आईआईटी के अलावा कोई गवर्नमेंट कॉलेज में इसकी एंट्रेंस या इसमें एडमिशन के लिए कोई?
एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, कई विद्यार्थियों का प्रश्न होगा, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के सबसे बढ़िया जो कोर्स हैं वे आईआईटी के माध्यम से, एक बात, लेकिन दो इंस्टीट्यूट में आपको बताना हूँ। नंबर एक है तोलानी इंस्टीट्यूट पुणे, यहाँ पे भी आप ये कोर्स कर सकते हैं, लेकिन उतनी मान्यता नहीं है जितनी आईआईटी के माध्यम से होगी। और दूसरा कोर्स मुंबई में भी चलाया जाता है, एक चेन्नई में और एक मुंबई में, आप इन कोर्स की तरफ जा सकते हैं।
एक और क्वेश्चन करूँगा सर, आज SC ST रिजर्वेशन का जमाना है, तो अब जैन समाज के लिए ऐसे कोई इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एक्सक्लूसिवली फॉर जैन हों या कोई अच्छे इंस्टीट्यूट?
अच्छा प्रश्न है, चारों तरफ रिजर्वेशन की बात है और 70% तक रिजर्वेशन में जा रहे हैं। सरकार ने चाहे हमें अल्पसंख्यक घोषित कर दिया है, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए नौकरियों में और एंट्रेंस एग्जाम में कोई आरक्षण नहीं होता। अब हम क्या करें, यदि हमारी जैन समाज की कोई शैक्षणिक संस्था है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जिसमें जैन समाज के ट्रस्टी हों, जैन समाज के मैनेज होती हों, तो ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर हमारे विद्यार्थियों के लिए, समाज के विद्यार्थियों के लिए 50% तक आरक्षण हो सकता है, लेकिन वो जैन समाज की हो। दूसरे समाज के लिए हम आरक्षण की बात नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात, आप ये मान के चलें कि यदि 60% आरक्षण है तो हम 60% भूल जाएं, हम तो 40% के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आरक्षण कोई भी पार्टी आएगी, कांग्रेस की आरक्षण, बीजेपी आरक्षण, कम्युनिस्ट तो आरक्षण, सबका वोट बैंक चलता है, ये दुर्भाग्य है देश का, लेकिन हम इसको बदल नहीं सकते। तो हम कैसे बदलें, अपन अपने आप को तैयार कर लें कि 100 में से 60 नहीं है, हम 40 के लिए खूब मेहनत करें, और जब मेहनत करेंगे आप निश्चित माने हम आगे बढ़ेंगे। गर्ल्स इन आर्मी फोर्सेस, बेटी बहुत अच्छा प्रश्न है, एयरफोर्स एंड नेवी। देश में आर्मी में जाने के लिए, सेना में जाने के लिए दो प्रकार की परीक्षाएं होती हैं मोटे तौर पर, एक होती NDA, इंडिया ने नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा, नेशनल डिफेंस एकेडमी के माध्यम से हम 12th के बाद में आर्मी में जा सकते हैं, लेकिन ये NDA परीक्षा गर्ल्स के लिए नहीं होती, छात्राओं के लिए नहीं होती, केवल छात्रों के लिए ये NDA परीक्षा होती है। यदि आपकी इच्छा डिफेंस में जाने की है, मिलिट्री में जाने की है, तो मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि सचमुच हम मातृभूमि की सेवा के साथ में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये बधाई की बात है। और लड़कियां बहुत तेजी से मिलिट्री में जा रही हैं, सेना में जा रही हैं, सेना के हमारे तीनों अंग में जा रही हैं। आपको इसके लिए CDS देना पड़ेगा। CDS मतलब कंबाइंड डिफेंस एग्जामिनेशन। ये परीक्षा ग्रेजुएशन के बाद में होगी। तो यदि आप सेना में जाना चाहती हैं, आप प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि आप ग्रेजुएट नहीं हो पाए। ग्रेजुएट होने के बाद में हम सेना के तीनों अंगों के अंदर जा सकते हैं CDS परीक्षा के माध्यम से। प्रश्न ये होगा कि हम CDS परीक्षा की तैयारी कैसे करें। चार बातें CDS परीक्षा के लिए। नंबर एक, आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, अंग्रेजी का पेपर होता है। जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए। रीजनिंग और मैथ, ये चार बातें यदि आपकी अच्छी है, ये सभी दूर लागू होगी। सब ज्यादातर परीक्षाओं में आप CDS के माध्यम से इंडियन आर्मी में जा सकती हैं और मातृभूमि के साथ अपना देश सेवा के साथ करियर शुरू कर सकती हैं।
सर, क्या फॉरेन एजुकेशन के लिए GRE और TEFL के अलावा भी कोई एग्जाम हैं? अगर सर नहीं तो एग्जाम कैसे कंडक्ट होती है, इनका सिलेबस क्या?
अच्छा प्रश्न है। जैसा मैंने कहा कि जिस तरह से देश के अंदर हमें रोजगार की संभावनाएं हैं, वैसे ही विदेश में रोजगार की संभावनाएं और ज्यादा हैं। वो मैंने आपको उदाहरण भी दिया कि वर्किंग पॉपुलेशन कम होती जा रही है और होती जाएगी, आज भी कम हो गई है। नहीं तो क्या कारण था कि चार देशों ने, नीदरलैंड ने, जर्मनी ने, इटली ने, ब्रिटेन ने लिए इंडियंस के लिए वर्क परमिट शुरू कर दिया, रोक लगा दी थी। इसका कारण ये है कि हमारे लिए विदेशों में अब करियर के अवसर बढ़ने लगे। आपका प्रश्न ये है कि हम जाना चाहते हैं, हम कौन सी परीक्षाएं दें। जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हैं, जैसे आपने पूछा, तो आपको दो परीक्षाएं खास होंगी। एक होगी GRE मतलब ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, दैट इज कॉल्ड GRE। दूसरी होगी TOEFL। GRE परीक्षा में आपका मैथ का, एप्टीट्यूड का, एनालिसिस का मात्रा देखा जाएगा। और TOEFL परीक्षा ये होगी कि आपको कितनी अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी भाषा की प्रावीण्यता आपको TOEFL एग्जामिनेशन होगी। यदि आप TOEFL नहीं देते हैं तो एक सेट एग्जामिनेशन होती है, वो भी दे सकते हैं। तो इन परीक्षाओं के बारे में सोचें। और आप सबसे इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से मेरा एक विनम्र आग्रह है कि हमें अंग्रेजी तो अच्छी करनी है। देखिए, बार बार हर प्रश्न के उत्तर में एक बात उभर के सामने आ रही है, अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। देश के करियर के लिए और विदेशी करियर के लिए भी होनी चाहिए। हिंदी को हमको पूरा महत्व देना है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी मदर टंग है। लेकिन हिंदी के साथ में हमें अच्छे करियर के लिए अंग्रेजी को भी महत्व देना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण के साथ में इसका महत्व और बढ़ा है। तो आप दोनों की तैयारी करें, GRE की तैयारी करें और साथ में TOEFL की।
सर, BSc कंप्यूटर करने वालों के लिए आगे क्या लाइन
है? आपका नाम बताइए प्लीज। BSc कंप्यूटर साइंस करने के बाद में क्या संभावना और अच्छा करियर कौन सा हो सकता है? देखिए, BSc कंप्यूटर साइंस करने के बाद में जो सबसे अच्छा करियर आपका होगा, वो करियर होगा MTA डिग्री के माध्यम से, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। MTA डिग्री का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ा है। जैसे जैसे कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे IT का महत्व हो रहा है, वैसे MTA डिग्री का महत्व हो रहा है। आप जहां भी रहती हैं, वहां दो तरह की MTA की परीक्षा होंगी। एक परीक्षा होगी राज्य स्तरीय परीक्षा। कल्पना करें, आप MP में रहती हैं, तो मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल है, वो हर साल MTA परीक्षा आयोजित करता है मध्य प्रदेश के कॉलेजों के लिए। देश में भी कई विश्वविद्यालयों के द्वारा, कई विश्वविद्यालय MTA की अलग अलग परीक्षा आयोजित करते हैं। आप ऐसा करें, आप इंटरनेट के माध्यम से ये जानें कि MTA परीक्षा कहाँ कहाँ हो रही है, कब कब आपको आवेदन करना है MTA एंट्रेंस। MTA एंट्रेंस में चार तरह के प्रश्न होंगे, जनरल इंग्लिश के होंगे, जनरल मैथ के होंगे, रीजनिंग के होंगे और जनरल नॉलेज के होंगे। ये चार तरह के प्रश्न आप तैयार करें, आप स्टेट लेवल की MTA और नेशनल लेवल की MTA के लिए जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस बताइए, प्रश्न पूछा गया है और इसके उत्तर में मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से आज पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत पहले क्रम पे है, आने वाले 10 सालों में पूरी दुनिया में भारत बायोटेक्नोलॉजी में भी पहले क्रम पे होगा। जिस तरह से दुनिया में आईटी का महत्व और आईटी के कैरियर है, वैसे बायोटेक्नोलॉजी के कैरियर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के कैरियर आपको कब मिलेंगे? केवल बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी करने से नहीं मिलेंगे, आपको एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में करना पड़ेगा, आपको एमटेक बायोटेक्नोलॉजी में करेगा, खूब स्कोप है। आप सपना संजोइए बायोटेक्नोलॉजी का। और रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च का कितना महत्व है। मेरे अखबार में, रोजगार निर्माण में, जो मध्य प्रदेश सरकार का अखबार है, एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा था पिछले साल कि सर मैं बायोटेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहता हूँ। मैंने उन्हें 5 इंस्टीट्यूट के नाम दिए थे, उनमें अमेरिका की भी एक इंस्टीट्यूट थी। आप सच माने, मेरे उस प्रश्न का उत्तर अखबार में पढ़ा गया, रोजगार निर्माण में पढ़ा गया, और वह जो छात्रा थी, इंदौर की छात्रा थी, इस समय अमेरिका में बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रही है। तो आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं रख सकते हैं और आपको इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। केवल डिग्री लेवल पे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करने से हमारा अच्छा करियर नहीं बनेगा, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में जरूर सोचें।
कानपुर श्री राजीव शिक्षक जी विराजमान है और दोपहर को बहुत से बच्चों ने आईआईटी के स्पेशलिस्ट की मांग की थी, कृपया बैठे, उन्हें हम सुनेंगे और उसके बाद फिर भंडारी जी आपके समक्ष होंगे। दर्द फिर प्रतिभाओं का तेरी आंखों से बहकर निकला, तेरा एहसास प्रतिभाओं के दर्द से बेहतर निकला। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा माननीय राजीव दीक्षित जी का परिचय आदरणीय श्री सुभाष जैन जी ने, फिर तत्पश्चात उनका स्वागत और उद्बोधन। केवल आपको 15-20 मिनट और रुकना है, मेरा विशेष अनुरोध है प्रतिभाओं से, उन्हें घर जाने की कोई जल्दी नहीं होना चाहिए, ये उनके लिए ही है। कृपया केवल पीछे जो इच्छाएं भंडारी जी से करना चाह रही थी उनसे हैं।
डॉक्टर भंडारी यहाँ रुकेंगे और आप ऐसा मानिए कि 10 मिनट का इंटरवल है, 10 मिनट के इंटरवल के बाद डॉक्टर भंडारी जयंती भाई 10 मिनट का इंटरवल है।